आज है 15 जुलाई दिन बुधवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। नरेंद्र मोदी ने की स्किल इंडिया कैंपेन की शुरुआत।
पिछली शताब्दी में दुनिया के अंदर हमने आईआईटी के माध्यम से विश्व में अपना नाम बनाया, हमें गर्व है इस बात का। लेकिन इस शताब्दी में हमारी आवश्यकता है आईटीआई।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई नीति आयोग की बैठक। विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों ने नहीं की शिरकत। और जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो सानिया मिर्जा क्या चाहती हैं?
मैं चाहती हूँ कि इंडिया ही जीते, चाहे शोएब 100 बना ले या 50 बना ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जब भी 100 या 50 बनाते हैं पाकिस्तान जीतता है।
सुनेंगे खास बातचीत और होगा दुनिया जहां भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली में स्किल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। मोदी सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत युवाओं को व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल विकास शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। मौजूदा वित्त वर्ष में स्किल इंडिया मिशन के लिए 5,040 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ग्रीस की संसद में खर्चों में कटौती के लिए कड़े आर्थिक उपायों पर जबरदस्त बहस हुई है। वहीं राजधानी एथेंस में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जो खर्चों में कटौती का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों ने एथेंस की सड़कों पर रैलियां निकाली और बेलआउट की शर्तों के खिलाफ नारे लगाए। ग्रीस को आर्थिक संकट से उबरने के लिए भारी आर्थिक मदद मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ानी होगी और करों में भी इजाफा करना होगा। ग्रीस को इन शर्तों के बारे में आज ही कोई फैसला अंतिम रूप से करना होगा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगान तालिबान के नेता मुल्ला उमर ने सरकार के साथ शांति वार्ता का समर्थन किया है। ईद से पहले अपने नाम के साथ जारी संदेश में मुल्ला उमर ने कहा कि इस्लामी कानून दुश्मन के साथ शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के लिए मना हरगिज नहीं करता। मुल्ला उमर ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान की मध्यस्थता में अफगानिस्तान सरकार के साथ पहली बार आमने सामने आधिकारिक तौर पर बातचीत की थी, लेकिन इस मुलाकात के बारे में मुल्ला उमर ने कोई खास जिक्र नहीं किया। अटकलें लगाई जा रही थीं कि शांति वार्ता को तालिबान नेता मुल्ला उमर का समर्थन हासिल नहीं है, लेकिन इस बयान से तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के बाद ब्रिटेन ने तेहरान में इस वर्ष के अंत तक अपना दूतावास दोबारा खोलने की उम्मीद जताई है। ब्रिटेन ने तेहरान में 4 साल पहले अपना दूतावास तब बंद कर दिया था जब ईरान के प्रदर्शनकारियों ने उस पर हमला किया था। ब्रिटेन के विदेश मंत्री फिलिप हैमोंड ने ईरान के साथ कारोबारी संभावनाएं तलाशने की भी उम्मीद जताई है। दक्षिणी यमन में अदन से मिल रही खबरों में कहा गया है कि स्थानीय लड़ाकों ने हुती विद्रोहियों पर पकड़ और मजबूत कर ली है। सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन सेना हवाई हमलों से स्थानीय लड़ाकों की मदद कर रही है। इन हमलों का उद्देश्य हुती विद्रोहियों को अदन से बाहर निकालना है। मार्च में हुती विद्रोहियों ने राष्ट्रपति मंसूर हादी को सत्ता से बेदखल कर दिया था, तभी से वहाँ हुती विद्रोहियों और स्थानीय लड़ाकों के बीच संघर्ष हो रहा है। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या में मीडिया अधिकारों की पैरवी करने वाले एक समूह ने सरकार पर प्रेस की आजादी पर प्रहार करने का आरोप लगाया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। विंबलडन में महिला डबल्स जीतने वाली सानिया मिर्जा क्यों मानती है कि पुरुष टेनिस की स्थिति बेहतर है? सुनेंगे खास बातचीत थोड़ी देर में, लेकिन पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर आज सरकार की महत्वाकांक्षी कौशल विकास मिशन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की शुरुआत करते हुए कहा कि इस मिशन के तहत युवाओं को व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल विकास की शिक्षा दी जाएगी। सरकार ने इस योजना के तहत साल 2022 तक 50 करोड़ लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। एक रिपोर्ट के साथ सलमान रावी।
केंद्र सरकार ने बुधवार से शुरू किए गए अपने स्किल इंडिया मिशन के लिए 5,040 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस मिशन के तहत अगले साल तक 24 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने और फिर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आर्थिक मदद देने का प्रावधान भी किया गया है। भारत में हुनरमंद कामगारों की संख्या मात्र 3.5% ही है और विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए विभाग के मंत्री राजीव प्रताप रूडी का कहना था कि इस मिशन को कामयाब तभी माना जाएगा जब भारत को ऐसे हुनरमंद कारीगरों के लिए दुनिया भर में माना जाए।
हम एक कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये कामयाबी कब होगी? ये कामयाबी तभी होगी, आज हम लोग अखबारों में देखते हैं कि इश्तिहार आता है और इश्तिहार में लोग अपने लिए दामाद ढूंढते हैं, अपने लिए बहू ढूंढते हैं, लेकिन उसमें लिखा रहता है कि हमारा दामाद ग्रेजुएट हो, हमारा दामाद इंजीनियर हो, हमारा दामाद आईएएस हो, हमारा दामाद आईपीएस हो। जिस दिन इस देश में अखबारों में इश्तिहार आने लगेगा कि मेरा दामाद मास्टर शेफ हो, मेरा दामाद मास्टर प्लम्बर हो, मेरी बहू मास्टर ब्यूटिशियन हो, शायद हम लोग इस कामयाबी को हासिल कर लेंगे।
कौशल विकास मिशन के तहत लगभग 500 ऐसे क्षेत्र हैं जहां युवाओं को प्रशिक्षण देने की रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें सरकारी विभागों और उपक्रमों के अलावा निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी शामिल किया गया है। मिशन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि अगर भारत के लिए पिछली शताब्दी आईआईटी की थी तो आने वाली शताब्दी आईटीआई की होगी।
पिछली शताब्दी में दुनिया के अंदर हमने आईआईटी के माध्यम से विश्व में अपना नाम बनाया। दुनिया ने हमारे आईआईटी को एक अच्छी इंस्टीट्यूशन के रूप में स्वीकार किया, हमें गर्व है इस बात का। लेकिन इस शताब्दी में हमारी आवश्यकता है आईटीआई की।
प्रधानमंत्री का कहना था कि आने वाले दिनों में अगर दुनिया को सबसे ज्यादा कार्यबल कहीं से मिलने वाला है तो वो भारत ही है।
हमारे पास दुनिया को जो वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है, हम लिख करके रखे, आने वाले दशकों में विश्व को सबसे ज्यादा वर्कफोर्स अगर कहीं से मिलेगा तो हिंदुस्तान से मिलेगा। दुनिया की मांग हमारे सामने स्पष्ट है कि दुनिया को जरूरत पड़ने वाली विश्व की जो आवश्यकताएं हैं, एक बहुत बड़ा जॉब मार्केट है। उस जॉब मार्केट का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके हमने अपने लोगों को तैयार करना।
हालांकि फिक्की के पूर्व अध्यक्ष राजीव कुमार का कहना था कि पिछली सरकारों ने भी इस तरह की योजना बनाई थी जो सिर्फ फाइलों में ही सिमट कर रह गई।
ये अजीब सी चीज है और बड़ी वहाँ पे बड़ा भारी एक ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर का हो भी रहा है और होना चाहिए भी। फ्रॉम मैनुअल एग्रीकल्चर टू यू नो मैकेनाइज्ड इक्विप्ड टेक्नोलॉजिकली सेवी एग्रीकल्चर
जी।
और वहाँ पर ये SECC की जो रिपोर्ट अभी आई थी उसमें ये दिखाया गया कि 51% हाउस होल्ड अभी भी मैनुअल कैजुअल लेबर करते हैं एग्रीकल्चर में। उनके स्किल की फॉर्मेशन की कोई बात ही नहीं करता है। ये सारा का सारा एक बड़ा भारी अर्बन बायस लेके सब काम हो रहा है और मैं देखता हूँ एग्रीकल्चर में इतनी ज़्यादा इस समय स्किल्स की शॉर्टेज है क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बदल रही है और बदलना चाहिए भी
जी।
मगर उसके लिए स्किल्स नहीं अवेलेबल है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये तीन चीज़ें मेरे समझ में तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट। पहली चीज़ कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ पर अटेंशन सो दैट दी
डिमांड
सप्लाई साइड इज नॉट नीडेड, मतलब एक जो डिमांड हो उसकी डिमांड जनरेट हो
जी।
दूसरा कि एक काफ़ी डिटेल्ड ब्लूप्रिंट चाहिए कि आप कौन से स्किल तैयार करेंगे और किस टाइमलाइन में करेंगे। और तीसरी चीज़ इसका रूरल ओरिएंटेशन भी होना बहुत जरूरी है, अगर सिर्फ अर्बन ओरिएंटेशन रहा तो काम नहीं मिलेगा।
अब देखना यह है कि 5 सालों में 34 लाख स्किल बेरोजगारों को ऋण दिए जाने का लक्ष्य जो सरकार ने रखा है उसे वो पूरा भी कर पाती है या नहीं, या फिर ये महत्वाकांक्षी योजना सरकारी पेचों में ही न फंस कर रह जाए। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
मौजूदा वित्त वर्ष में स्किल इंडिया मिशन के लिए 5,040 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। हमारे सहयोगी सलमान रावी ने ही अर्थशास्त्री शंकर अय्यर से पूछा कि पिछली UPA सरकार भी अपने कार्यकाल में ऐसी ही नीति लेकर आई थी और अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने युवाओं को लक्ष्य बनाते हुए ऐसी योजना की शुरुआत की है, लेकिन कितनी प्रभावशाली हो सकती है ये योजना?
एक बात हमको कबूल करना चाहिए कि ये जो प्रोग्राम है बहुत जरूरी है और ये कम से कम 10 साल पहले भारत को सोचना चाहिए था जब 100 करोड़ की आबादी हो गई थी। विश्व में जो भी देश ग्रोथ मिरेकल जहां पर भी हुआ, वो US को ले या जापान को ले या चीन को ले, वहां पर बढ़ती हुई आबादी को सक्षम करने के लिए जो जो प्रोग्राम्स किए गए वो साक्षात रूप में किए गए और वो सक्सेस हुए, इसलिए वहां पर ग्रोथ हुई। दूसरा सत्य ये है कि वहां पर जो व्यवस्था है, जो संस्था है
जी,
वो उसमें शामिल हुए, और उसमें एक भागीदारी बनी थी। भारत में अनफॉर्चुनेटली ये होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से लिखा गया और जिस कारणों से लिखा गया उसको एक अजीब तरह से पेश किया जाता है, जैसे कि हर कार्य हर प्रोग्राम पर किसी सूबे का या किसी मुख्यमंत्री का या किसी मंत्रालय का की सूबेदारी होती है और इस सूबेदारी की लड़ाई में कार्यक्रम विफल हो जाता है। तो सफलता के लिए सबसे बड़ी जरूरत है मार्केटिंग, जिसकी पेशकश आज प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया तरीके से किया है, जो कॉमन लॉजिक कहते हैं जिसको, उसको बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। ये भारत के लोग इस लॉजिक से अनजान नहीं है, न लोग जो ब्यूरोक्रेसी में वो भी अनजान नहीं है, लेकिन ये कुछ हुआ नहीं है अभी।
ये है कि डिमांड जो है वो उतनी है नहीं, तो अब डिमांड जो है वो बढ़ाने पर भी बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब जहाँ तक भारत का सवाल है, रिपोर्ट बताते हैं कि 3.5 लोग ही जो है वो प्रशिक्षित हैं यानी स्किल्ड हैं भारत में। तो आपको लगता है कि अब डिमांड के हिसाब से जो है, या मतलब ग्रोथ पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि ये सक्सेसफुल हो पाए ये जो स्किल मिशन है?
देखिए, वो फिर से हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं, मतलब जो एग एंड चिकन एंड एग सिचुएशन, जो मुर्गी और अंडा वाला सिचुएशन जो है, वहां पर हर बात ये अटक जाती है। ग्रोथ होगा, जॉब होगा क्या, इतने लोग प्रशिक्षित हो गए वो क्या करेंगे, ये दोनों को आप अलग तरीके से देखें तो ये हो सकता है। ये सत्य है कि ये 40 करोड़ लोगों को भारत में जॉब मिलना नामुमकिन है, भारत में उतने जॉब्स उत्पन्न नहीं होंगे। लेकिन उससे बड़ा चैलेंज क्या है? उससे बड़ा चैलेंज यह है कि देश में जो रूरल इंडिया में, जो जिसको हम भारत कहते हैं, वहां पर 45% जो युवा है वो प्राइमरी से कम पढ़ा हुआ है, साक्षर है, अपना नाम शायद लिखना जानता है, लेकिन उस युवा को आपको किसमें प्रशिक्षित करेंगे और किसके लिए कितने जॉब उत्पन्न होंगे, और बाहर विदेशों में जहां पर टेक्नोलॉजी की इतनी बड़ी दौड़ लगी हुई है, वहां पर किस तरह के जॉब उत्पन्न होंगे? ये जो मैपिंग है, जो GIS मैपिंग करना चाहिए, वो मैपिंग अभी तक नहीं हुआ, अब भी उसके बारे में चर्चा ही हो रही। मैपिंग करके उसके बाद में आप प्रोग्राम बनाएंगे अगले 10 साल में क्या होगा वगैरह वगैरह। तो सबसे बड़ी चैलेंज जो आपके पास है वो जो स्कूल ड्रॉपआउट्स है, उनका आप क्या करेंगे, उनको क्या प्रशिक्षण देंगे और किस तरह से उनको आगे बढ़ाएंगे? तो ये सब करने के लिए एक बहुत बड़ी कोलिशन की जरूरत है, जिसमें इंडस्ट्री, स्कूल्स, कॉलेजेस, आर्म फोर्सेस के लोग, एक्स आर्मी में, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा आना पड़ेगा।
तो यही तो बात कर रही है सरकार, आज जो कुछ हुआ है विज्ञान भवन में उसमें इसी बात पे चर्चा हुई कि भागीदारी, चाहे वो निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो, सब मिलकर जो है ये तय करें। इसमें फौज के बारे में भी राजीव प्रताप रूडी ने कहा।
बिल्कुल, और ये जो सिलेबस तैयार होना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, ये अपने आप में एक, अगर ये व्यवस्था ठीक से बन जाए तो ये बहुत ही, मतलब विश्व में कभी नहीं हुआ ऐसा मिरेकल होगा ये।
अर्थशास्त्री शंकर अय्यर से बात कर रहे थे सलमान रावी। आज राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक भी हुई। इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना था, लेकिन केवल 16 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ही इस बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों ने शिरकत नहीं की। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना था कि विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों की गैर मौजूदगी लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। इस बैठक में मुख्य तौर पर संसद के मानसून सत्र से पहले कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से दूरी बनाए रखी। मैंने इस बारे में जानकारी के लिए बात की हमारे सहयोगी जुबैर अहमद से।
सबने अलग अलग कारण दिए। ममता बनर्जी ने तो साफ कह दिया कि उनकी पार्टी इस भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ है, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं होंगी, जो बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट था उनका। कुछ जो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री थे, जैसे कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि पहले से उनकी कोई एंगेजमेंट है, वो इसलिए नहीं आ सकते। UPA द्वारा जो रन किए जा रहे हैं राज्य, उनके जो 9 मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो एक पूरा स्ट्रैटेजी के तहत वो नहीं आए, क्योंकि वो इस बिल के ख़िलाफ़ हैं और कांग्रेस पार्टी इस बिल के ख़िलाफ़ है, इसलिए वो नहीं आए। तो प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में, जो लोग आए थे 16 राज्यों के जो मुख्यमंत्री आए थे, उनसे ये कहा कि भाई 2013 का जो पारित किया गया बिल था UPA सरकार द्वारा, उसमें बहुत सारी कमियां थी। उसमें सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी कि राज्य सरकार ज़मीनों को अक्वायर नहीं कर पाई थी, इसीलिए उन्हें उसमें संशोधन की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए उन्होंने ये बिल बिल लाया है नया, और उनको समझाने की कोशिश की कि इसमें एक सहमति बने और आप सब साथ आएँ ताकि ये बिल राज्यसभा से पास किया जाए। लोकसभा ने पहले ही इसको बिल पास कर दिया। अरुण जेटली ने बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें मुख्य तौर पर यह बताया कि प्रधानमंत्री का जोर इस बात पर था कि एक कंसेंसस बने।
जी, कंसेंसस बने, लेकिन जैसा कि आपने भी बताया कि लोकसभा में पारित हो चुका है, मानसून सत्र कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाला है, तो राज्यसभा में किस तरह से पारित करा पाएगी बिल को सरकार?
पिछले सत्र में सरकार ने बहुत कोशिश की लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली, और एक बहुत बड़ी मोदी सरकार के लिए चुनौती है इस बिल को पारित कराना। और इसमें सरकार की अब तक कोशिश ये है कि एक सर्वसहमति से ये बिल पारित हो जाए राज्यसभा से भी, लेकिन ऐसा दिखता नज़र नहीं आ रहा है, और ख़ास तौर से कांग्रेस इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो अब इस मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरुण जेटली ने, तो उन्होंने ये कह दिया कि राज्यों को अपनी मर्जी से बिल पारित कराने की अपने हिसाब से इसकी अगर जरूरत हो तो कर सकते हैं।
बहुत बड़ा सुझाव मुख्यमंत्रियों का था कि केंद्र प्रयास करे कि एक आम राय बनेगी और एक कंसेंसस बनाने का प्रयास करे, लेकिन राज्य इनडेफिनेटली उस कंसेंसस की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, और अगर आप कंसेंसस से नहीं इसको पारित करवा सकते तो फिर केंद्र राज्यों पे छोड़ दे। जो राज्य तेजी से प्रगति करना चाहते हैं वो अपने स्टेट लेजिस्लेशन इसमें सजेस्ट करे और केंद्र उन स्टेट लेजिस्लेशन को अप्रूव करे।
तो बेसिकली हमें ये समझ में आ रहा है कि कंसेंसस की कोशिश सरकार हर मुमकिन करेगी, लेकिन इसमें उनको सफलता नहीं मिली, तो एक झटका तो ज़रूर लगेगा उनको। अब वो इस तरफ कदम उठाने जा रहे हैं कि कम से कम वो राज्य जहाँ पे उनकी सरकार है वहाँ पर अपने तौर पर राज्य स्तर पर एक नए बिल को लाके लैंड एक्वायर कर सकते हैं, ज़मीन हासिल कर सकते हैं, ताकि विकास का काम जो वो करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारी ज़मीनें चाहिए, तो वो राज्य कर सकती हैं। और ज़्यादातर ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी सरकार, जहां पर बीजेपी की सरकार है, तो अरुण जेटली ने ये भी कहा कि जो राज्य नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे।
तो नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लिया गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों ने, ये थे जुबैर अहमद। विंबलडन में महिला डबल्स चैंपियन का खिताब जीतने वाली सानिया मिर्जा ने कहा है कि भारत में पुरुष टेनिस की स्थिति महिला टेनिस से बेहतर है। सानिया ने हाल ही में स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर विंबलडन का महिला डबल्स खिताब जीता है। आज सानिया हैदराबाद में बीबीसी गूगल हैंगआउट में शामिल हुई। हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने उनसे बात की, आइए सुनते हैं ये खास बातचीत।
सानिया, आपने मार्टिना के साथ विंबलडन डबल्स का खिताब जीता, विश्व के नंबर एक खिलाड़ी बनी है, ये बताइए कि इतने दिनों के बाद इस उम्र में आकर पहला ग्रैंड स्लैम डबल्स जीतना कितना मुश्किल था?
वेल, आप मुझे बहुत बुरा साउंड करा रहे हैं, लेकिन मैंने पहली बार विंबलडन एक्चुअली 2003 में जूनियर विंबलडन जीता था। ऑलमोस्ट लाइक द लाइफ इज कम अ फुल सर्कल जो कहते हैं, एंड हमारे लिए ये टूर्नामेंट जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। आई थिंक इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, लेकिन मोर देन एनीथिंग जिस तरह से हमने जीता और जिस तरह से मैच था, एक एपिक फाइनल था, और बहुत जिस तरह से क्राउड उसमें इन्वॉल्व हो गया था, हम इन्वॉल्व हो गए थे, आई थिंक इट मेड इट फॉर परफेक्ट विंबलडन फाइनल। सो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लास्ट आई थिंक 6-7 महीने से टुगेदर टू ट्राई एंड बी द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, और आई एम ग्लैड कि हमारी मेहनत सफल हुई।
ये बताइए कि मार्टिना हिंगिस के साथ आपकी जो जोड़ी है वो थोड़ी अलग सी दिखती है, कुछ नई सी ऊर्जा, नई सी स्फूर्ति दिखती है आप लोगों ने जब भी आपको कोर्ट पर उतरते हैं, आखिर क्या खास है मार्टिना के साथ खेलने को लेकर?
हम काफी कंपैटिबल हैं ऑन एंड ऑफ द कोर्ट, और ऑब्वियस बात है कि हमारी गेम्स कंपैटिबल हैं, द काइंड ऑफ जेल टुगेदर जिस फ्रॉम द मिनट हमने डिसाइड किया कि हम साथ में खेलेंगे, और यू नो लेफ्ट कोर्ट से वो खेलती हैं और राइट कोर्ट से मैं खेलती हूँ, और दोज आर आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स। तो इसी वजह से आई थिंक द वे वी कम टुगेदर वो कंसोलिडेट कर जाता है हमारी गेम्स को, और मेरे वैसे यू नो पास में बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही है, इनफैक्ट लास्ट ईयर कारा ब्लैक के साथ जहाँ पे हमने चैंपियनशिप जीता सिंगापुर में, तो लेकिन मार्टिना के साथ इंस्टेंट सक्सेस मिला हमें। फर्स्ट 3 टूर्नामेंट जो हम खेले, 3 ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट हम जीत गए, और आफ्टर दैट एक दो फाइनल्स खेले, तो 9 टूर्नामेंट में हम ऑलरेडी WTA फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। दैट शोज कि हमारी जो कंसिस्टेंसी है लास्ट 4 महीने में हैज बीन ट्रेमेंडस।
लेकिन साहब ने ये बताइए कि भारत की तरफ से महेश भूपति एक बहुत नामचीन खिलाड़ी थे, उसके बाद लियांडर पेस थे, अभी भी लियांडर पेस ने मिक्स डबल्स का खिताब जीता है, आपने डबल्स का जीता है, लियांडर पेस की खासी उम्र हो चुकी है, 42 साल के आसपास है, आपने अभी टेनिस बाकी है, लेकिन आपके बाद भारतीय टेनिस का चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, आखिर इसका फ्यूचर क्या है?
Well, I think men's tennis looks a lot better than women, to be very honest. Because Somdev hai unke paas. Abhi Rohan Bopanna almost finally khel gaya Wimbledon mein, wo semi-final mein hara. Saket Mainini hai, jiske saath maine abhi haal hi mein Asian Games gold medal jeeta. So the men's side, there's more people. Women mein ek do ladkiyan hain jo are trying to make that breakthrough, whether it's Prathna Thombare ya Ankita Raina. And I think with the right guidance and the right kind of training and stuff, definitely they can at least get to, you know, 100 in the world, which has never not happened before or after me.
So, Tanya, how did you start playing tennis? When did you get interested in this game? And how did you start playing tennis?
Well, I was 6 years old when I started tennis. Obviously, you can't take any decision at 6 years old. But when I was 11 or 12 years old, I won Adidas Nationals and under 14 and under 16 together, same way. Us din, I really did feel ke shayad, you know, I might be good at what I'm doing and I think this could be my career. So, I think it was around 11 ya 12 saal ke mein, which is still very young.
Sanya, Bharat aur Pakistan ka jab cricket ka match hota hai, to zahir hai, aap Bharatiya hai aur aapke shohar Pakistani hai, Shoaib Malik. So, jab match hota hai, to us waqt kya jazbaat hote hai, kaise emotions hote hai aur kya chal raha hota hai dimag mein?
नहीं, ये बहुत अच्छा अनुभव होता है. लेकिन आप बिलीव करें, मैं चाहती हूँ कि इंडिया ही जीते, चाहे शोएब 100 बना ले या 50 बना ले. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जब भी 100 या 50 बनाते हैं, पाकिस्तान जीतता है. तो उनका रन रेट इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा है.
तो जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच होता है, तो भारत की जीत की कामना करती हैं सानिया. आप सुन रहे थे सानिया मिर्ज़ा के साथ किया गया गूगल हैंगआउट का पहला भाग. सानिया खाने में क्या पसंद करती हैं और भारत में विंबलडन का क्या है भविष्य, आपको सुनवाएंगे 9:30 बजे घटना चक्र में. और अब समय है दुनिया जहां का. अमरीका की पहल पर ईरान के साथ दुनिया के ताकतवर देशों का समझौते तक पहुंचने से अमेरिका की विदेश नीति बदलती प्राथमिकताओं की भनक मिल रही है. हालांकि क्यूबा, म्यांमार, वियतनाम, ईरान जैसे देशों के साथ अमेरिका बातचीत की मेज पर नजर आ रहा है, तो अच्छा लगने के बावजूद संदेह के बादल भी घुमड़ रहे हैं. निखिल रंजन दुनिया जहां में आज अमरीकी विदेश नीति के इसी बदले मिजाज की चर्चा कर रहे हैं.
दुनिया जहां.
From the NBC newsroom in New York, President Roosevelt said in a statement today that the Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii from the air.
साल 1941 में अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर जापान के 300 से ज्यादा विमानों ने धावा बोला. चार साल बाद हिरोशिमा और नागासाकी ने परमाणु बमों का कहर झेला. साल 1986, बर्लिन की एक डिस्कोथेक में धमाका हुआ. मारे गए लोगों में एक अमरीकी सैनिक था. धमाकों के तार लीबिया के चरमपंथियों से जुड़े. नतीजा, अमरीकी लड़ाकू विमानों से कर्नल गद्दाफी के गढ़ पर बमों की बारिश हुई. इसका निशाना एक नवजात बच्ची भी बनी, जो गद्दाफी की बेटी बताई गई.
Our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts.
साल 2001 में न्यूयॉर्क और पेंटागन पर हुए चरमपंथी हमले का नतीजा अफगानिस्तान और इराक में दिख ही रहा है. बात अमेरिका के इतिहास की हो तो लड़ाकू विमान, युद्धपोत, बम और कैदी जैसे शब्द ही ज्यादा सुनाई देते हैं. लेकिन अब बहुत कुछ बदलता दिख रहा है. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा.
जब से ओबामा प्रेसिडेंट बने 2009 में, तब से उन्होंने पूरे दुनिया को ये बता दिया था कि उनका जो विदेश नीति होगा कूटनीति पे ज्यादा निर्भर करेगा. मस्कुलर अप्रोच अमेरिका का विदेश नीति में दिखाई नहीं पड़ेगा.
अमेरिका के लिए वियतनाम युद्ध भी ऐसा ही मोर्चा था. लेकिन 1950 में शुरू हुए इस युद्ध के दो दशकों में 50,000 से ज्यादा सैनिक गंवाने के बाद भी बेअसर होने की जिल्लत झेलने वाला अमेरिका वियतनाम के साथ दोस्ती की जमीन मजबूत कर रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? दक्षिण पूर्व एशिया मामलों के जानकार डॉक्टर राहुल मिश्रा।
सबसे बड़ी वजह है जो अमेरिकन पॉलिसी रिबैलेंसिंग या पिवट टुवर्ड्स एशिया जो पॉलिसी बराक ओबामा साहब लेके आए हैं उसका एक बहुत बड़ा योगदान है।
अमरीकी नीति अपनी जगह है, लेकिन वियतनाम जैसे देशों की क्या मजबूरी है कि वो अमरीका के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं? ICWA के रिसर्च फेलो और अमरीकी नीतियों की जानकार डॉक्टर स्तुति बैनर्जी।
क्यों नहीं जाएगा? अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है वो वियतनाम से बहुत अच्छी है, वियतनाम के एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स काफ़ी अमेरिका में जाते हैं। दूसरा, चीन का एक प्रभाव इस जगह पे काफ़ी रहा है और अमेरिका ही एक ऐसा शायद देश है अभी जो उस प्रभाव को काफ़ी हद तक टक्कर दे सकता है। तीसरा, बहुत सिंपल सा है, उनको डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस टेक्नोलॉजी चाहिए और ये दुनिया भर में सबको मालूम है कि अमेरिका सबसे प्रथम है इस चीज़ में।
सिर्फ वियतनाम ही नहीं, अमरीकी अधिकारी 20 महीने तक दिन रात बात करके ईरान के साथ समझौते की सूरत पर पहुंचे हैं और वो भी तब जब वहां सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खमेनेई का असर कायम है। फिदेल कास्त्रो का क्यूबा और जुंटा के घेरे में रहा म्यांमार भी अमरीकी नेताओं के साथ बातचीत की टेबल पर है। अशांति की बात करें तो सीरिया, यमन, मिस्र में भारी संकट होने के बावजूद अमरीका ने सीधे दखल नहीं दिया, लीबिया से कर्नल गद्दाफी को हटाने में भी नहीं। अमरीका के लिए ये मशहूर है कि सरकारों के बदलने से विदेश नीति नहीं बदलती, तो फिर बराक ओबामा ने दुश्मन देशों के साथ बातचीत के लिए कैसे रास्ता बना लिया? प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा।
अमेरिका का जो यूथ है वो यूथ को वियतनाम वार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और जो लोग वियतनाम से वापिस आए थे उनका उम्र काफी बढ़ चुका है, तो आम जनता जो अमेरिका में है वो वियतनाम वार को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। और जब शीत युद्ध खत्म हो गया और सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया और अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि उन्होंने शीत युद्ध को जीत लिया, तब अमेरिका एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरह से अपना प्रभाव हर जगह स्प्रेड किया उसको लेके आम जनता अमेरिका में तो खुशी है, तो इसीलिए वो आम जनता एक रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं रखते।
राष्ट्रपति बराक ओबामा के शासन में अमरीका की बदली नीति को कई जगहों पर महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसकी असली वजहों में बदली हुई परिस्थितियों के साथ ही नए जमीनी और राजनीतिक हालात का भी उतना ही योगदान है। डॉक्टर राहुल मिश्रा।
अमेरिका ये आज महसूस कर रहा है कि चाइना एशिया में एक सबसे बड़ी पावर बन के उभर रहा है और अगर हम साउथ चाइना सी को इस पूरे एपिसोड में देखें तो हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे इट्स अ पोटेंशियली कॉन्फ्लिक्ट जोन ऑल्सो और दूसरे यहाँ पे जो छोटे राष्ट्र हैं चाहे वो फिलीपींस हो या वो वियतनाम हो ये चाइना की मिलिट्री जो पावर बढ़ रही है उससे काफी घबराए हुए हैं और शायद अमेरिका इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है कि यही है वो मौका है जिसमें अमेरिका वियतनाम या फिलीपींस जैसे देशों को अपने साथ कर सकता है और अपनी ताकत को यहाँ पे बनाए रख सकता है।
अलग इलाकों की कहानी भी अलग है लेकिन अमरीकी बातचीत वाला रुख हर कोने में दिख रहा है।
क्यूबा के साथ जो संबंध है उसपे तो मुझे लगता है कि शायद वो बीती बातों को भुला देने की एक कोशिश है, लेकिन अगर आप बाकी देश देखें चाहे वो वियतनाम हो चाहे वो म्यांमार हो बहुत साफ तौर पे दिख रहा है कि चाइना की बढ़ती हुई ताकत मिलिट्री और इकोनॉमिक जो दोनों पक्ष में बढ़ रही है उससे अमेरिका कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबराया हुआ सा लग रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो म्यांमार एक ऐसा देश है जो कि पिछले 25 साल 8888 इंसिडेंट जब हुआ था जब वहां पे लोकतांत्रिक सरकार जो बनने वाली थी उसको ओवरथ्रो किया गया और मिलिट्री हुंटा वहां आ गई, तब से लेकर के और अभी तक चाइना के साथ म्यांमार के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन अब म्यांमार वापस बाहर आना चाहता है उस रिलेशनशिप से और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एक होना चाहता है।
बातचीत तो हो रही है लेकिन समझौतों को लागू कर पाना कितना मुमकिन होगा? प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा।
क्यूबा को लेके भी अमेरिका में एक कंसेंसस नहीं बना अब तक। ईरान का मामला यूएस क्यूबा नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा सिग्निफिकेंट है अगर पूरे विश्व के स्तर पे हम सोचें। वेस्ट एशिया में जिस तरह से कॉम्प्लेक्स गृह युद्ध हो रहा है अलग अलग देश में उस पे साफ प्रभाव क्या पड़ेगा कहना मुश्किल है।
अमरीकी बातचीत का लहजा चाहे जैसा हो लेकिन बमों और लड़ाकू विमानों की आवाज की तुलना में बहुत सुरीला है। शायद इस सुर में उत्तर कोरिया जैसे देशों की आवाज भी जल्द ही शामिल हो। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
और अब सुनते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली में स्किल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। ग्रीस की संसद में खर्चों में कटौती के लिए कड़े आर्थिक उपायों पर जबरदस्त बहस हुई है। अफगान तालिबान के नेता मुल्ला उमर ने सरकार के साथ शांति वार्ता का समर्थन किया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के बाद ब्रिटेन ने तेहरान में अपना दूतावास दोबारा खोलने की उम्मीद जताई है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे संदीप सोनी। इसी के साथ दिन भर में आज बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी ताजा तरीन खबरों के साथ मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।